गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप श्री 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 प्रेमपुरी जी महाराज, श्रीखंडानंद जी महाराज और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 7, 8 और 9 श्लोक को पढ़ेंगे।
सर्वभूतानि कौन्तेय,
बोलिए
सर्वभूतानि प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि, कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्, न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः।
नवा अध्याय अत्यंत पवित्र अध्याय। भगवान ज्ञानेश्वर जी महाराज ने जब इंद्राणी में प्रवेश किया महासमाधि लेने के पूर्व, नवे अध्याय का पाठ करते करते गए थे। भगवान के हृदय की वाणी, भगवान के हृदय का भाव, भगवान की कृपा का एक श्रोत नवा अध्याय है। पवित्र जगन्नाथपुरी के प्रांगण में श्री रथ शर्मा जी, भगवान जगन्नाथ जी के साथ प्रत्यक्ष बात करने वाले, प्रतिदिन भगवान के प्रांगण में बैठ करके विष्णु सहस्र नाम का पाठ और नवे अध्याय का पाठ करते थे। जितना गहनता से इस नवे अध्याय का पाठ और उनका चिंतन करते चले जाएंगे, परमात्मा के अधिक निकट अपने आप को पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। भूत माने मैं, आप, सब कुछ, जड़, चेतन, जग, जीव, जत, पहाड़, नदियां, समुद्र, पेड़, पंछी, आकाश, ग्रह, सूर्य इत्यादि सब कुछ, पंच महाभूत मेरी प्रकृति में लय होते हैं और कल्प के आदि में मैं फिर उनकी रचना करता हूं। अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्म के अनुसार रचना करता हूं। कौन्तेय, हे अर्जुन, कुंती के पुत्र कौन्तेय, कल्पक्षये, कल्प के अंत में सर्वभूतानि, तमाम भूतों को, मामिकाम प्रकृतिम, माम इकाम प्रकृतिम, मेरी प्रकृति को प्राप्त होने के प्राप्त होते हैं, अर्थात यान्ति, मामिकाम प्रकृतिम यान्ति, मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात प्रकृति में लय होते हैं। कल्पादौ, कल्प के आदि में, कल्प आदौ, कल्प के आदि में, तानि उनको अहम मैं पुनः विसृजामि, फिर उनकी मैं रचना करता हूं। अब क्या कहा, प्रकृतिं स्वाम अष्टभ्य अवष्टभ्य है ये प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विश्वजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृते हे वशात स्वाम अपने। ये स्व जो शब्द है ना, ये इसके दो भाव होते हैं। स्व होता है कल भी होता है, स्व आत्मा भी होता है। नहीं स्व स्व उपासित को ही पुरुष स्व वेदो, कल कल कभी करना नहीं, क्योंकि कल कभी किसी की आने का भरोसा नहीं। और स्वात्मा बोलने से, स्व बोलने से अपना आत्मा, स्व आत्मा को ही स्व कहते हैं। स्वाम अपने प्रकृतिम त्रिगुणमयी माया को क्या कहा, अवष्टभ्य अंगीकार करके प्रकृति है स्वभाव के वशात वश में अवशम परतंत्र हुए। इदम इश कृष्णम संपूर्ण भूत ग्रामम, ग्रामम बोले से समूह, इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों का समूह, इंद्रिय ग्रामम नाम इंद्रियाणा नाम समूह। तो पुनः पुनः बारंबार विश्वजामी रचना करता हूं। न च माम तानी कर्माणी निबद्धंती धनंजय, न च माम तानी कर्माणी निबद्धंती धनंजय, ये अर्जुन तेषु उन कर्मसु कर्मों में असक्तम आसक्ति रहित च और उदासीनवत उदासीन के सदृश, उदासीन के करते हुए भी अकर्ता का भाव, नाहम करता अरि करता, मैं नहीं करता हूं, मैं करने से उदासीन नहीं आम है। आसीनम स्थित हुए माम मुझ परमात्मा को, तानी वे कर्माणी निबद्धंती न मुझे बांधते नहीं है, मैं कर्म तो करता हूं किंतु वो कर्म का मुझे बंधन नहीं है, क्योंकि वो कर्म मुझे बांधते नहीं है। देखिए ये तो बहुत सुंदर विषय है और थोड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई कथा कहानी नहीं है। ये जो तथ्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, दो तीन ढंग से उसको समझना पड़ेगा तो आसान हो जाएगा। हमारी मानव जाति का ये मूलभूत प्रश्न है। आदमी निरंतर जानना चाहता है कि सृष्टि कैसे निर्मित होती है, कैसे विलीन होती है, इसे कौन बनाता है, कौन इसे संभालता है, विलीन कहां होती है, बनाने वाला है या नहीं, प्रारंभ है अंत है, कोई प्रारंभ नहीं है कोई अंत नहीं है, प्रकृति में कोई प्रयोजन ही क्या है, प्रयोजन बहुत सुंदर शब्द है, कोई हेतु है क्या, कोई लक्ष्य है क्या। इसके लिए सारा अस्तित्व ये जानने के लिए आतुर है। लक्ष्यहीन तो एक अराजकता है। हमारे पास में दो दो चिंतन हो सकते हैं कि कोई लक्ष्य है लक्ष्य नहीं है, व्यवस्था है व्यवस्था नहीं है। ये बहुत गंभीर बात है सोचना। कोई भी वस्तु विषय है वो उसके पीछे कोई कारण होता है, और कोई कारण होगा तो उसकी असर भी होगी। कल शाम कथा में वाला बहुत घर भर कर रहा था तो मधुबाबू पूछते हैं कोई तकलीफ है क्या, अरे तकलीफ है कन्हैया फंसा पड़ा है। कहां से फंसा, हरे कृष्ण मंदिर से। कथा में बैठने के पहले या एक बार भोजन करते हैं तो दूसरे भोजन के बीच में कुछ मुंह में डालने का अभ्यास नहीं है, डाले तो मुंह साफ करो। वहां उन्होंने कहा एकादशी है महाराज लो, और वो महात्मा रहे गले में माला डाल दी, लो महाराज अब हाथ में काम रसा लो, डाल लिया मुंह में वो कोकोनट का चीनी डाल करके, बस वो घसर बसर करता रहा। तो ये घसर बसर क्यों कर रहा है, ओ तो ओ, जो असर है इफेक्ट है वो कारण तो था ना, छलिया कहां जाके बैठेगा, कहां से आएगा, भरोसा नहीं है। देर इज ए कॉज देर इज ए इफेक्ट, देर कैनॉट बी इफेक्ट विदाउट एनी कॉज। जगत में हर वस्तु विषय के कारण के पीछे एक और असर भी है और असर के पीछे कारण भी है।
एक ऐसे विचार हैं कि जो कहते हैं कि जीवन एक संयोग है, एक्सीडेंट मात्र है, इट वॉन्ट बी पॉसिबल। एक्सीडेंट थोड़ा होता है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, कोई कारण भी नहीं है, सिर्फ जीवन एक घटना है। अब घटना है कि दुर्घटना है वो तो हम लोग तय करेंगे, एक घटना है, सच हो या असत्य हो, किंतु जीवन तो है। यदि ये सारा जो संसार है, जो ब्रह्मांड है, अगर संयोग मात्र है, तो जीवन की व्यवस्था विकेंद्रित हो जाएगी। हमारे योगाभ्यास में एक सूर्य नमस्कार होता है, उसको हाथ को सामने लाना है, फिर हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, कान के हाथ में दोनों जब हाथ आएंगे तब पीछे झुकना है, किंतु खड़े हो जाना एक बार चुपचाप अकेले कोई ना रहे तब, और फिर ये हाथ को ऊपर लाने के पहले सिर को लटका देना, गिर पड़ोगे। क्यों गिर पड़ोगे? ये जो सिर है इन्हें सेंट्रल, इसको केंद्र बोलते हैं, वो केंद्र जब विकेंद्रित हो जाता है तो गिर पड़ेंगे। तो सृष्टि का भी तो कोई केंद्र होना चाहिए जो सारी सृष्टि को चलाता है। अगर जीवन एक घटना ही है, कोई संयोग ही है, तो कोई जिए, कोई मरे, कोई खाए, कोई पिए, किसी के साथ में सूत्रबद्धता नहीं रहेगी। पूरी सूत्रबद्धता है, पूरी व्यवस्था है। कठिनाई यह है कि विचारक जितना कहे कि जगत अराजक है, खुद उसकी चेतना उसकी बात को स्वीकार नहीं करेगी। क्योंकि जब आप कहते हैं कि अराजकता है, तो अराजकता कहने पर कहना है कि यहां सब कुछ जो है वो मिथ्या है। मिथ्या बोलने के साथ में सत्य भी जुड़ जाएगा, प्रकाश बोलने से अंधकार जुड़ जाएगा, आरोह बोलने से अवरोह हो जाएगा। समुद्र में एक ज्वार भाटा आता रहता है, आज द्वादशी है तो नियम है कि द्वादशी है तो द्वादशी तो 12 तिथि होती है, तो 12 का ये 3/4 क्या होता है, 9 होता है, तो 9 बजे भर्ती का समय, दिन में भी रात में भी, पूर्णिमा के दिन दोपहर 12 बजे रात में, एक नियम बना हुआ है। ये कितने साल के बाद में फिर से ये पृथ्वी है और सूर्य है और चंद्र एक लाइन में कैसे आएंगे, वो आज भी ज्योतिष लोग बैठ के तय कर सकते हैं। इस साल में कितने ग्रहण आएंगे वो तय करते हैं। अरे कभी तो 2 महीने में 3 ग्रहण आ जाते हैं। और एक बार ऐसा हो गया कोणार्क में, दोपहर को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक अंधेरा हो गया, चांद भी दिख गया, तारे भी दिख गए, 1 घंटे तक दुनिया भर से बड़े बड़े कैमरा लेकर लोग आए। तो ये अगर सुयोजित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, प्लान किया हुआ नहीं है, तो कैसे हो सकता है? शायद ख्याल आता है कि जगत कोई एक अराजकता है, मान लीजिए अनार्की है, क्योस है। मैं समझाऊं आपको, समझो तो पागल है मैं, क्यों समझाना जब आपके मन में लगा हुआ है जगत एक अराजकता है। जगत में सब गड़बड़ है। अरे गड़बड़ आपके दिमाग में है, वो है विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, मैं खड़ा हो जाऊंगा तो ये शरीर जो है वो ही दिखेगा। उमा माता जी खड़े होंगे तो उमा माता जी दिखेंगे, गिरीश भाई खड़े होंगे तो गिरीश भाई खड़े होंगे, और राजू नारायण खड़े होंगे तो राजू नारायण दिखेंगे। इस ये दर्पण के सामने जो खड़े होंगे वही दिखेंगे। आपके मस्तिष्क में अराजकता है तो जगत भी अराजक ही दिखेगा, किंतु मस्तिष्क में विचार करे कि नहीं, सुयोग्य है, प्रबंधित है, मैनेज्ड है, सिस्टम में है, स्थिति में है, पद्धति से है, तो वो फिर कोई आपत्ति नहीं है। अगर हम कहें कि नहीं नहीं ये बात नहीं है, जगत अराजक है, तो सिद्ध करो। जो सिद्ध करना चाहेगा तो राज के नींव के ऊपर ही अराजक सिद्ध हो सकता है, नीति की नींव के ऊपर ही अनीति की कल्पना हो सकती है। अब तक जगत में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है कि जो इस पूरी सृष्टि के नियम को मिथ्या कह सके, करके दिखाए। मान लीजिए, मुझे पता नहीं है कि आप लोगों में से किसी को एक चांस बोलते हैं, चांस मिला है क्या पोस्टमार्टम देखने का। मुझे बड़ा शौक है ये सब देखने करने के लिए। ये पोस्टमार्टम देखने का भी आनंद है, जैसे कि अलमीरा खोलो उसमें किताब मिलेगी, वैसा एक पोथी रखने वाला मिलेगा, कुछ कपड़े सपड़े मिल सकते हैं। तो पोस्टमार्टम करेंगे तो पहले जैसे तरबूज काटते हो ऐसे एक खोपड़ी काट करके उसका एक निकालेंगे, फिर एक दिमाग देखेंगे ठीक है क्या, फिर यहां से काटेंगे पेट को काटेंगे, लीवर कहां है, किडनी कहां है, पेनक्रियास कहां है, इंटेस्टाइन कहां है, ब्लैडर कहां है, यूट्रस कहां है, महिला है तो ओवरीज कहां है, देखने का बड़ा मजा है। अभी वो जहां किडनी रहती वही किडनी रहती है, दाएं बाएं नहीं रहती है, हार्ट जहां रहता है वहीं हार्ट रहता है। एक बार हम आ रहे थे जरसगुड़ा से नागपुर, एक परिषद करके आए, वो जो परिषद थी वो इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस थी, और उसमें से इंटरनेशनल एक मेडिकल कांग्रेस में बोलना था। इत्तेफाक से कूपे में, उन दिनों में ये एयर कंडीशन वगैरह नहीं रहा, कूपे में हमारे साथ में एक डॉक्टर रहे, वो गायनेकोलॉजिस्ट थे, वो डॉक्टर थे, उनको स्मोक करने का अभ्यास है, वो सिगरेट पीते हैं। हमने कहा भाई ठंडी बहुत है, वो 28-29 दिसंबर आप थोड़ा बाहर जाके पी लो। हाँ नहीं, हम यहीं पियेंगे, अब फर्स्ट क्लास ये तो क्या हो गया। तो हमने कहा ठीक है, तो खिड़की खोल देते हैं, पीते रहो, ठंड लगता है ना, खिड़की क्यों खोलते हो। मतलब तुम भाई खिड़की भी नहीं खोलने देते हो, सिगरेट भी नहीं पीते हो, क्या करते हो। फिर उसने अपना सूटकेस खोला, एक किताब निकाला, एक हेट निकाला, एक ये टोपी निकाला है निकाला। फिर जब नागपुर आने लगा तो हौचपोच करके रख दिया, फिर बंद नहीं गया। मैंने कहा बैठ जा, मैं बंद करता हूं। वो जो चीज जहां से निकाली थी वहां रख। तू कैसा डॉक्टर है भाई, पेट काटता है तो आंत की जगह में लीवर रखता है और लीवर की जगह में पेनक्रियास रखता है क्या? एक व्यवस्था बनी हुई है। क्या व्यवस्था है? सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर, वर्षा में गिरा नदियां बहती, नदियां से गिरी ओ सागर बनकर। तू हर रूप में है, हर रंग में, हर रूप में हर रंग में वही बना हुआ है। क्या एक सिस्टम बना हुआ है? एक खाली बोतल ले लो अपने घर में, थोड़ा दाल सब्जी चटनी पापड़ डाल लो और सवेरे उसको देखो सूंघो, गंदा आ जाएगी। इस बोतल में डालते रहते हो चटनी पापड़ रोटी सब्जी, हाँ कभी सब सफा। अन्नात रस, अन्न से रस बनता है, रसात रक्त, रस में से रक्त बनता है, और रक्त के अंदर से मेद बनता है, उसे टिश्यू बनते हैं, उसे मसल्स बनते हैं, उसे मैरो बनता है, उसे वीर्य बनता है, उसे शुक्र बनता है। एक साइकिल बना हुआ है। हाँ अन्नात भवंती भूतानि पर्जन्यात् यज्ञ संभवात्, यज्ञात भवती पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। हो वर्षा, यज्ञ करते हैं उसे वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, और अन्न है उस खाने से हमारा जीवन है, हमारा जीवन फिर यज्ञ करने के लिए है। तो विश्व को यदि हम चाहें तब भी अनार्की नहीं बोल सकते, केओस नहीं बोल सकते, मिथ्या नहीं कर सकते, इसकी व्यवस्था नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, पूरा व्यवस्थित है। आंख ने सुंदर पुष्प को देखा, आह कितना सुंदर है, आह कौन बोला आंख को? आंख का और मुंह का कोई संबंध है क्या? नहीं है संबंध है तो कैसे बोलता था? आंख के देखने के साथ में मुंह बोलता है, कितना सुंदर है। पांव चल जाते हैं, हाथ तोड़ लेता है, नाक करके सीट में डाल देते हैं, यहां पर डाल देते हैं। आंख ने देखा, मुंह ने कहा वाह, पांव चल के गए, हाथ ने तोड़ा, अपने कमीज में यहां रखा, कृष्ण जी को दे दिया, राधा जी को दे दिया, अपनी राधे रानी को दे दिया, कुछ तो किया। ये आंख का मुंह से, मुंह का पांव से, पांव का हाथ से, हाथ का दिमाग से कोई संबंध है क्या? नहीं संबंध अगर होगा तो ये सब होगा कैसे? सांप को देखने से वाह चिल्ला के भाग रहे हो, सांप को देखने के साथ में वो जो संबंध है दिखता नहीं, फिर भी हमारी प्रत्येक इंद्रियों का संबंध हमारे सेरिब्रम सेरिबेलम के साथ में जुड़ा हुआ है। उसको एफ्रंट्स एंड ईफ्रंट्स कहते हैं, स्पेलिंग एक ही है, उच्चार दोनों भिन्न भिन्न है। वो दिमाग से दिमाग है, वो बाहर जाता है, बाहर से दिमाग में आता है। आंखों ने देखा सुंदर है, मम्मी को बुला देख सूरज कितना सुंदर दिख रहा है। वो संकष्टिका चंद्रमा नहीं देखे तो मम्मी भोजन नहीं करती है। दो दिन से बादल चांद नहीं दिखा, मम्मी का दिन भर आज रात है उसमें चांद दिखा। हाँ मम्मी मम्मी देख, क्यों मम्मी देख, वो चांद को देखने के साथ में मम्मी को बुला रहे। पांव में कांडा चुभने से आ करके दौड़ते हो, एक संबंध बना हुआ है। पूरी सृष्टि का जन्म मृत्यु जरा व्याधि संबंध बना हुआ है, पूरी सृष्टि बिना संबंध के नहीं है। अरे एक पहला द्वार है ये, गंभीरता से सोचना है हमारे जीवन का। कृष्ण क्या कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामेकाम, ये तमाम जो है वो मेरे अंदर से प्रकट हुए, एक सिस्टम कृष्ण ने बनाया। और क्या कहा, कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पादौ, और कल्पक्षय होगा तो उसको मेरे में वो विलीन कर देते हैं। एक बीज होता है, वो बीज में से वृक्ष निकलता है, फिर वृक्ष होते से फिर बीज हो जाता है। बीज मां वृक्ष तो, वृक्ष मां बीज तो, नरसिंह मेहता ने जो 500 साल के पहले कहा, यही उपनिषद यही गीता का ज्ञान है, यही वेद का ज्ञान है। अभी बीज को तोड़ो, बीज को तोड़ने से उसमें कोई वृक्ष दिखता है क्या? इंसान को काटने से दूसरा अंदर से इंसान पैदा होता है क्या? वो पत्नी को काट दिए तो अंदर से दूसरा बच्चा होता है क्या? नहीं होता है, किंतु एक स्थिति होती है जब बीज के अंदर से वो अंकुरित होकर के वृक्ष हो जाता है। एक स्थिति होती है शुक्र के द्वारा माध्यम से स्त्री के गर्भ में वह बच्चा प्रस्फुटित होता है, एक प्रकृति है, विकास की स्थिति है, विकास ही है। एक पत्थर है, एक पत्थर जो है उसमें भी चैतन्य है, उसमें अणु है, उसमें परमाणु है। देखिए हमारे यहां एक बात देखना, ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं हमने, दुनिया भर में घूमते हैं तो इस बात को सत्य को समझना पड़ेगा कि हमारी जो संस्कृति है, वैदिक परंपरा है, वैदिक वांग्मय है, हिंदू परंपरा है, सनातन धर्म है, वो जितना व्यवस्थित जितना साइंटिफिक है दूसरा नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हमारी प्रकृति में जन्म है मृत्यु है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी झठरे शयनम यह संसारे खर दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे। हमारे यहां सब राउंड है, बताओ तो राउंड है कि नहीं है? ये सूर्य गोल है क्या कि चपटा है? बोलो बोलो, गोल है। पृथ्वी गोल है, नारंगी भी गोल है। वो एक दिन सोनल मानसिंह लड़ गई, वो सोनल मानसिंह है बड़ी, वो उड़ीसी नृत्य की नृत्यांगना है। हमारे एकेडमी में ने 12-13 साल तक पढ़ाता रहा आईएएस बच्चों को, तो वो कहती है मैं नृत्य के पहले कुछ भाषण करूंगी। तो लोगों को भाषण तो दिन भर सुनते ही है, सोनल को क्या भाषण करना है? तो बोलती है ये पताका है, ये ऐसा शिखर है, ये ऐसा है, ये तो ये वाला है, ये धनुर होता है, ये सूचिका है, ये शिखर है, वो सब भाषण कर रही है। लोगों को रुचि नहीं, बड़ा 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 लोग बात कर रहे हैं। तो लड़ गई, इसे तुम लोगों से तो देहात के लोग अच्छे होते हैं, मैं नाच नहीं करूंगी। अभी उसको कौन मनाए, स्वामी जी आप मनाइए। तो मैंने कहा ठीक है, तो उनकी भाषा हम बोल लेते, तो ठीक है मैं नाचती हूं, मुझको इंट्रोड्यूस कौन करेगा? मैंने कहा मैं करता हूं, चिंता मत करो। हमने कहा जो भरतनाट्यम होता है वो सीधा होता है, उसको थोड़ा ऊपर से दबा दो जो गोल हो जाता है ना, वही ओडिसी होता है। कैसे होता है ओडिसी? क्योंकि ओडिसी आता है ओडिशा से, ओडिशा में जगन्नाथ जी गोल हैं, तो गोल नहीं बोलते, अड़ाव बोलते हैं, अड़ा गोड़ा, जगन्नाथ जी गोड़ा अच्छी चका डोड़ा, उनकी आंखें भी गोल है, उनके हाथ भी गोल है, वो खुद ही गोल है। और वहां जल ओडिशा का लिखा हुआ सब गोल गोल है, और नड़ा वड़ा खड़ा हड़ा पखाड़ा, तो यही ओडिशी डांस। वो खुश हो गया, स्वामी जी मैंने कभी सुना नहीं। ये क्यों है कि हमारी प्रकृति में सब कुछ गोल है? सूर्य अपनी जगह में घूम रहा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्र घूम रहे हैं, और ये सूर्य चंद्र पृथ्वी तमाम फिर और एक ग्रह नक्षत्र के चारों ओर घूम रहे हैं। ये हमारा जो एक संस्कृति संस्कार का संनियम है वो एक केंद्रवत है कि जहां से प्रारंभ किया वहीं पूरा हो जाता है। हम कहते हैं वासाओं से जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृहणाति नरोपराणी। अरे वृक्ष के पत्ते सूख गए तो गिरेंगे तो नए पत्ते आएंगे। इंसान के शरीर का देहावसान होता है क्यों? वो नया देह ग्रहण करने के लिए होता है। किसी भी वजह से ये जो हमारा शरीर व्याधिग्रस्त हो ना हो, अरे ऐसे चल गए, कैंसर में तो बिल्कुल ठीक हो गए थे किंतु हार्ट से हार्ट फेल हो गया। अरे कैंसर में ठीक हो गए, हार्ट फेल एक नियम बना, एक कौतुक बना, एक कारण बना, किंतु मृत्यु तो था। हाँ सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बस चले गए, शौचालय में बैठे थे बस वहीं प्राण चला गया, कुछ भी नहीं था, रात में नींद नहीं चले गए। अरे भाई जो आए तो गए, आए नहीं तो जाना क्या। ये जो कपड़ा पहना एक दिन फटेगा तो उसको छुट्टी करना पड़ेगा नया, वो छुट्टी क्यों किया, नया लाने के लिए। बहुत जरूरी बात है कि हमारे यहां हिंदू संस्कृति कहती है कि हमारी संस्कृति जो है वो हमारा धर्म है, हमारी प्रणाली है, जीवन की यात्रा है वो एक प्रयोग के समान। वो ईसाई लोग कहते नहीं, वो सीधी लाइन है। ईसाई लोग बोलते हैं बस जन्म हो गया मर जाएंगे वापस नहीं आएंगे, उनकी अपनी मान्यता। दुनिया भर में कहीं चले जाओ इस विचार को एडिंगटन नाम का एक बहुत बड़ा चिंतक रहा। वो एडिंगटन जो है विशुद्ध वैज्ञानिक चिंतक था, उसने ये सोचा कि जगत पूरा वस्तु पदार्थों का समूह है। वो जो मरने लगा तो मरते मरते बोलता है कि मैंने चालू तो किया था कि वस्तु पदार्थों का समूह है, बट नाउ आई फील वर्ल्ड लुक्स मोर लाइक ए थॉट देन ए थिंग। वो विचारों का समूह है और विचार कहां है, जहां से उत्पन्न होते हैं वहीं पर वो लीन होते हैं। कृष्ण कहते हैं मुझसे ये सृष्टि का उद्भव हुआ, सृष्टि मुझ में ही लीन होती है। कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही, मेरा उसमें कोई अटैचमेंट नहीं है, डिटैच हो। ये कभी फुर्सत मिले तो इतवार के दिन शाम को ये चौपाटी में जाकर के बैठना, बच्चे क्या करते हैं देखना, देखने का भी विनोद है। लड़ाई करते मारपीट करते किसके लिए, मेरा घर तू क्यों गिरा रहा है। हा? वो अपना एक पांव रख लेते हैं रेता ऐसा करके, एक गोल बना लेते हैं, धीरे से पांव निकाल के ऐसा ऐसा करके सामने से बाएं से दाएं से एक सुंदर रेती का घर, एक रेती का लड्डू बना के ऊपर रखते हैं। आजकल तो पेड़ पौधे है नहीं वहां पर, नहीं तो एक चार ओर बाउंड्री बना के एक पौधा यहां पर एक पौधा यहां पर चार तरफ गेट बना लेते हैं। वो गुड़िया बनाती है, वो गुड्डू आता है, गुड्डू जब आता है तो वो गिराने के लिए मम्मी देखो ना गुड्डू का ऐसा करता है, वो गुड्डू को नहीं पास पड़ रही, लड़ाई होती है। पर मम्मी कहती है चलो अंधेरा हो गया, मम्मी आ रही हूं चलो, अपने ही पांव से सड़क तोड़ के चली जाती है। वो देखो बनाने के लिए बड़ी मेहनत की है। गुड्डू नजदीक आया तो लड़ाई हो गई थी, जाने के समय खुद तोड़ के चली गई। ये क्या है, राखना रमकड़ा मारा रामे रम तारा क्या रे, मृत्यु लोकनी माटी माथी मानव गई ने भाग्या। ये खिलौना बना रहे, खिलौने से खेल रहे। ऐसे ही हम भी ये सृष्टि में कुछ निर्माण करते कुछ छोड़ देते। बनाने का जो आनंद है उसको लय करने का भी इतना ही आनंद है। संगीत में अगर आपको संगीत करना है तो तानपुरा कसना पड़ेगा, तबला भी ठोकना पड़ेगा, तब जाकर के वो सूर में बजता है। और सूर में बजने के लिए ठोक के उसको सीधा करना पड़ता है, संगीत पूरा हो गया तो फिर उतार के भी रखना पड़ता है। अगर वो ऐसा ही छोड़ दिया तो तबला भी टूट गया सितार भी छूट जाएगी। बजाने के लिए कसना पड़ेगा, जब बजना पूरा हो गया तो फिर ढीला छोड़ देना पड़ेगा। ये क्या ऋतु है, ये क्या पद्धति है, ये क्या गुण है, या परिस्थिति क्या है। ये बड़ा सुंदर विचार है, कहा कि वस्तु और विचार, वो जो एडिंगटन कहते हैं कि मैं समझता रहा कि वस्तु ये नहीं, नहीं वस्तु नहीं है, विचार है। वस्तु स्थिर है, विचार की गति है, वस्तु को गति नहीं है, वस्तु की जड़ता है, वस्तु की स्थिरता है। विचार में उत्कर्ष है, विचार में अभ्युदय है, विचार में क्रांति है, विचार में उद्घोषणा है। आप सोच लीजिए कि विचार कैसे होता है। हम कहते हैं कि ईश्वर की धारणा से सृष्टि का ये गठन हुआ। हम कहेंगे ईश्वर है ही नहीं। अरे जब नहीं है तो सृष्टि कैसे भाई? ये तो क्या बोलते हैं, घड़ी कहते हैं ना। तो घड़ी कहां से आई? बाजार से। तो किसी ने तो बनाई होगी। ये क्या है? एक पुस्तक है। पुस्तक को देखो भाई, कहां से आया है? अरे ये तो आया है हमारे वृंदावन से आया है। समर्पक कौन है? पंडित ओंकार दास शास्त्री जी, वृंदावन के 5 पैसा मूल्य। एक पुस्तकों को देखे तो भले ही उसके अंदर में 32 पेज हो, 5 पैसा, किंतु इसको निर्माण करने के लिए इसके पीछे कितनी बड़ी सृष्टि है। ये पुस्तक को मुद्रण करने के लिए एक शाही चाहिए, एक पेपर चाहिए, शाही बनाने के लिए केमिकल फैक्ट्री चाहिए, पेपर बनाने के लिए एक पेपर की फैक्ट्री चाहिए, और पेपर बनाने के लिए एक बांस भी चाहिए। बांस के पीछे कितनी बड़ी सृष्टि चाहिए। ये 5 पैसे की कीमत का ये पुस्तक के पीछे एक बांस का जंगल, कागज बनाने की फैक्ट्री, शाही बनाने की फैक्ट्री, और छापने वाला मशीन, और यहां 2 पिन लगे हैं लोहे के, 2 पिन बनाने वाला कोई, पिन को मारने वाला मशीन, ये एक पुस्तक के पीछे एक पूरी सृष्टि बनी हुई है। आप कैसे करके कहो हा? एक रोटी दे लंगोटी तेरे द्वार पाऊं, काम क्रोध छोड़ चले हरि गुण गाऊं। एक रोटी बोलने से तो सीधा है, किंतु एक रोटी के पीछे कितनी इंडस्ट्री लगी उसका हिसाब है। एक लंगोटी का जो कपड़ा है, 4 इंच चौड़ा और 1.5 फीट लंबा, उसके पीछे कितनी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है आपको पता है? जगत में कोई भी वस्तु है वह स्वतंत्र नहीं है। हमारे जन्म के पहले हमारे माता पिता थे, हॉस्पिटल था, डॉक्टर था, गामड़ा गाम में जन्म थे तो दाई थी, सुयाणी कहवाए, वो कुछ भी तो था हमारे पहले। कुछ नहीं तो वो बच्चे का मां का जो संबंध है काटने के लिए भी एक कैंची नाइफ चाहिए। हमारे जन्म के पहले सृष्टि थी। जन्म होने के साथ में बिना सृष्टि के हमारा संभव नहीं, मृत्यु के बाद में भी गुजारा नहीं। 4 आदमी उठाने को चाहिए, तो कम से कम स्ट्रेचर में 2 चाहिए, क्रेमेटर में लेके जाओ, इंग्लिश में करना है तब भी वहां स्विच बोर्ड के साथ में पूरी इलेक्ट्रिक फैक्ट्री चाहिए। पूरी सृष्टि में हम कहीं से कहीं जुड़े हुए हैं। हम बच्चे थे तो यह सोचते थे कि समुद्र में जब पानी इधर आ जाता है तो फिर ये जब भाटा होता है ओट, तो पानी जाता कहां है? वो कहां से आता है, कहां जाता है? फिर किसी ने कहा वो हिंडोड़ो वही ना, वैसे झूलता है समुद्र भी, इधर जाता है उधर जाता है। हम सोचते थे ये सूर्य यहां से उदय हो गया तो रात में कहां जाता है? बोले सो जाता है। अरे कहीं तो सोता होगा, क्या ढककर के, कौन सी इतनी जबरदस्त रजाई है कि उसके इतना प्रकाश है? करोड़ों मील दूर है सूर्य हमसे, अभी वो करोड़ों मील दूर सूर्य जो है हमारे अपने मन में तय कर ले कि बस खत्म, मैं थक गया, आई वुड लाइक टू गो ऑन वेकेशन, अब मैं नहीं निकलूंगा, मुझको अस्तित्व नहीं चाहिए, 2 महीना मेरी किसी को उपस्थिति, आई वुड लाइक टू गो इन सिक्लूजन, अकेला कहीं चला जाऊंगा। क्या लगता है कि वो छुट्टी में गया तो हम लोग यहां ड्यूटी कर सकते? नहीं कर सकते, करोड़ों मील दूर है। इसलिए हमारे सैमुअल कांट नाम के जर्मन के एक तत्व चिंतक ने कहा, यू कैन नॉट प्लक ए फ्लावर इन योर ओन गार्डन विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टार इन द हेवन, अपने बगीचे का फूल आप नहीं तोड़ सकते तब तक जब तक कि आसमान में तारे नहीं हिलेंगे। मतलब क्या है, हमारे बगीचे का फूल हम तोड़ते हैं तो आसमान में तारे हिलते हैं, इतना संबंध है। वो द्रौपदी तो हंसी नहीं थी, महाभारत में ऐसा नहीं लिखा है। वो कथा कहानियां कहने वालों ने बोल दिया द्रौपदी हंसी, वो तो कृष्ण के द्वारा उकसाए जाने पर भीम हंसा था और कृष्ण ने लोगों को भी कहा भीम को सपोर्ट करने के लिए हंसो, मगर एक बार हमारे मुंह से हम कुछ बोल दें पब्लिक के बीच में, वो 10 दफे उसके प्रतिघात होते हैं, प्रतिघोष होता है, पता नहीं बचे तमें आम बोले आज कैम, क्यों बोले आपने ऐसा, माफी मांगो, ये क्या क्या होता है, ये लड़ाई क्यों होती है, एक मुंह से शब्द निकल गया, एक चेतना चली गई, एक कष्ट हो गया, जिसके पीछे एक संबंध बना हुआ है, बिना संबंध के कुछ नहीं है, ये क्या संबंध है हमारा, ये क्या स्थिति है। शांत जल में एक जगह में बैठ के हाथ से थोड़ा पानी को स्पर्श करो, दूर तक तरंग चले जाते हैं, ये पूरी सृष्टि है उसका एक से दूसरी ओर कहीं ना कहीं संबंध बना हुआ है, बिना संबंध के नहीं है, वो सतत गतिमान है, सतत क्रियमाण है, सतत वो ऊर्ध्व दिशा में है, सतत विकसित है, और विकास ही पृथ्वी का एक नियम है, फिर वो जन्म हो मृत्यु हो जरा हो व्याधि हो वो विकास के लिए है। अतः जब हम अपने आप को कहते हैं कि ये पत्थर, मान लीजिए एक पत्थर रखा हुआ है, तो पत्थर के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, वो अंदर इतने भ्रमणशील हैं कि हमें दिखते नहीं, इसलिए एक दूसरे को पकड़ के रखा है, किंतु पत्थर के निकट एक छोटी सी घास में एक छोटा सा फूल निकल आए, पत्थर का वजन अधिक है किंतु फूल का सौंदर्य अधिक है, पत्थर वहीं का वहीं रहता है, फूल पहले बीज था, बीज से पौध हुआ, पौध से कली हुआ, कली से पुष्प हुआ, विकास की प्रक्रिया है, इसलिए पत्थर से उस पुष्प का लक्ष्य, पुष्प की स्थिति, पुष्प का मूल्य अधिक है, किंतु पुष्प वहीं का वहीं है, मुरझा भी जाएगा, किंतु उसके निकट में आकर के एक मयूर नृत्य करता है, मयूर है उसकी चाल चटकनी है, रंग बड़ा सुंदर है, सिर के ऊपर में कलगी लगा रखी है, कला करके भी नाच कर सकता है, पत्थर से अधिक मूल्यवान पुष्प है, पुष्प से अधिक मूल्यवान मयूर है, क्यों, इसमें विकास है, उसमें जड़ता है, इसमें चेतन है, चेतन में स्थिरता है, यहां गति है, किंतु मयूर से भी अधिक, मयूर को स्वतंत्र चिंतन की क्षमता नहीं है, उससे अधिक एक बालक है जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, तो ये जो विकास की गति है उसको देखना कि पत्थर से विशेष पुष्प, पुष्प से विशेष पक्षी, पक्षी से विशेष मनुष्य, और मनुष्य में भी हम क्या कहें, एक एक लोगों के दिमाग को हम देखते हैं कि जो अधिक से अधिक, क्या आइंस्टाइन मान लीजिए इतना बड़ा बुद्धिमान है, वो उससे ज्यादा कौन मन को बता सकता है, हमारा मन जो है, हमारा सेरिब्रम है, हमारा सेरिबलम है, हमारी जो सिस्टम है, वो सिस्टम जो है वो इतना कार्यशील नहीं है, हमारा जो दिमाग है उसका लोग कहते हैं कि 10वां भाग भी हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, आइंस्टाइन ने कहते हैं कि 6ठा भाग यूज किया, तो कितने कंप्यूटर हमारे दिमाग के अंदर है, कोई उसको हिसाब किया क्या। तो हम प्रकृति को देखने के लिए, अपने आप को टटोलने के लिए हम थोड़ा सोचें कि कृष्ण क्यों कहते हैं कि मुझसे उत्पन्न होकर के मुझ में ही लीन होते हैं, ये चेतन व्यवस्था है। कृष्ण कहते हैं कि कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, मेरी प्रकृति में लय हो जाते हैं, और कल्प के आरंभ में पुनः, ओ मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये सौभाग्य मिला है गोमुख का दर्शन करने का। वो गंगा जी है, वो तो कहते हैं कि गंगोत्री से निकलती है, किंतु गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूर गौमुख है, वो कितना गौमुख है, बस ये हमारा ये स्टेज कितना लंबा है, इतना एक बहुत बड़ा गोलाकार है, उसमें से बर्फ की शिलाएं, वो खंड गिरते रहते हैं, पानी एकदम से आता रहता है, वो इतना है। प्रातः काले कुमारी कुसुम कुमकुमा जप्यमाला जपंती मध्याने प्रौढ़ रूपा विलसित वदना चारु नेत्रा विशाला सायान्ने वृद्ध रूपा गलित कुच युगा रुंढमाला वहंती सा देवी दिव्य देवी त्रिभुवन जननी सुंदरी त्वाम नमामि। जो एक छोटी कन्या है वो जो घाघरी पोलका पहनती है और वो छोटा एक चुटिया करती है और मटक मटक के चलती है, कूद कूद करके चलती है, पांव की एड़ी जमीन पर लगाते नहीं, पंजे पर चलती है और दोनों पांव को उठा करके चलती है और गाने के समय ना 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 करके चलती है। वो कन्या जब 12 14 साल की हो जाएगी ऐसे नहीं चलती है, और जब वो वधू हो जाएगी उसकी चाल में गंभीर्य हो जाएगा, और जब गर्भ हो जाएगा तो गर्भ को लेकर के वो धीरे धीरे राजरानी के जैसे चलती है, बस बच्चा हो गया तो बच्चे को लेकर के बैठ जाती है। वो नदी भी निकलने वाली ऐसी ही है, जो गोमुख से निकलती है झूम करके ऋषिकेश में आते आते चौड़ी हो गई, और अब आप कलकत्ता चले जाओ वो दादी मां के समान हो जाती है। हाँ, गलित कुछ उंडमाला वहंती सा देवी दिव्य देवी, जैसे दादी का ब्लाउज चौड़ा हो जाता है, स्तन गिर जाते हैं, झुर्रिया हो जाती है, ऐसा करके देखती है बिल्कुल दादी के जैसे। ये प्रकृति है, किंतु यही गंगा जब समुद्र में चली गई, अरे बाढ़ आ गई है, पटना डूब रहा है, हाँ कलकत्ते में डूब रहा है, ब्रह्मपुत्रा में बहुत जला गया, किंतु समुद्र में जाने के बाद में बाढ़ कहां है? समुद्र में जब चली गई तो बाढ़ कहां है? और वही समुद्र फिर वही ग्लेशियर में आ जाता है। ये प्रकृति का एक नियम। तो ध्यान रहे कि जीवन में जब भी कोई ऐसा क्षण चिंतन के लिए आए तो अपने आप को टटोलना कि वो हमारे जीवन में कोई आनंद दे रहा है क्या। आनंद कब होता है? जब कुछ विकास होता है तो आनंद होता है। आपने छोटे बच्चे को देखा है क्या? छोटा बच्चा है बोले सीधा रहता है, फिर बाद में करवट बदलता है। तो हमारे लाला जो है उन्होंने करवट बदली किया था, तो यशोदा जी ने उत्सव किया था, करवट बदली कर देखा, और वो लाला है तुम कह चलते रामचंद्र, वो घुटने से घुटने टुकुरे टुकुरे चलते श्याम आज, वो टुकुर टुकुर चल रहे हैं। अच्छा, और एक दिन छोटा बच्चा दीवार को पकड़ करके जब खड़ा हो गया तो खड़े होने के साथ में वो देखता है कि मम्मी मुझको देख रही है कि नहीं। खड़ा होने के बाद में उसका पहला कार्य है टू रिपोर्ट टू द मॉम दैट आई एम लुक मॉम आई एम एबल टू स्टे, देखो मैंने खड़ा हो गया। अरे मेरे प्यारे गोपाल, मेरे प्यारे मिट्टू, तुम्हारे पहले कभी कोई खड़ा नहीं हुआ था क्या? उसको आनंद है खड़ा होने का, और मम्मी भी दूर होकर के देख रही है, कितना सुंदर देख रही है, कितना प्यार से देख रही है। अभी देखो कि वो बच्चा दो पांव से चलना चालू कर दिया, दो पांव से दौड़ना चालू कर दिया, दो पांव में खड़ा होना चालू कर दिया, अब स्कूल में भी चला गया। अब बोलो अब घुटने में चल, अब बोलो घुटने में चल। गिरीश भाई मुश्किल था चालीन देखा तो पढ़ चलाए ना चलाए, क्यों? घुटने के बल गिरा के रख दूंगा, मतलब है तुमको पराजय करके रख दूंगा। वो एक विजय की यात्रा है, वो उत्कर्ष की यात्रा है, अभ्युदय की यात्रा है, उत्थान की यात्रा है, कि जो बच्चा है वो करवट नहीं बदली करम, सीधा नहीं, वो टेढ़ा ठोकरी के माफक था। और फिर वो यात्रा कहां समापन हो जाती है? वो बूढ़ा जब हो जाता है, जो बच्चा है वो आधा गोल रहता है, बूढ़ा हो जाने पर भी वो आधा गोल हो जाता है। बच्चा अपनी जिद नहीं छोड़ता है, बूढ़ा अपनी जिद पर अकड़ा रहता है। कभी ध्यान दें कि जो बच्चा है ना जिद करे गलत करे तो उसको माफ करो कि नहीं वो अलग बात है, किंतु वृद्ध कभी जिद करे तो उसको माफ कर देना, क्योंकि वो उसके जीवन की अवस्था ऐसी हो गई है। बाड़ा ने बुढ़ा बेई सरका, वो बच्चे हैं बाल हट वृद्ध हट, क्या करना है? तो वो जो एक कहां से प्रारंभ किया था, एक बचपन से प्रारंभ किया था, और बुढ़ापा आ जाए तो फिर भी जो चल नहीं सकता है तो फिर वो दोनों पांव से घुटुरन करे चलत चलत श्याम आज इटलत जात। वो जो घुटने में चल रहा था वो जो बच्चा, वो आज वृद्धावस्था में फिर वो घुटने में चलना चालू कर देते। वो एक अवस्था थी बच्चा है वो मलमूत्र का त्याग अपने बिस्तर में करता था, आज वृद्ध हो जाने पर वो कहां से प्रारंभ किया है? बीज से, वृक्ष बन गया, वृक्ष मां बीज तू, बीज मां वृक्ष तू, वो बचपन से आरंभ किया, वृद्धावस्था में वही अवस्था। कृष्ण कहते ये तो प्रकृति है, ये प्रकृति है, उसके लिए कोई नई बात नहीं करना, क्योंकि यही तो अस्तित्व है, इसी अस्तित्व के अंदर तो आप जाएंगे। कृष्ण कहते हैं कल्प के प्रारंभ में मैं इनकी रचना करता हूं, फिर इनका निर्माण करता हूं। ध्यान रखे कि निर्माण भी एक यात्रा है, निर्माण भी पुराने जैसा नहीं है, निर्माण भी एक अगला कदम है, निर्माण है एक उत्कर्ष है, निर्माण एक अभ्युदय है, निर्माण एक रचना है, निर्माण एक घटना है, और यही घटना, इसलिए कृष्ण कहते हैं ये तमाम करते हुए भी मैं उससे दूर रहता हूं। जैसे बच्चों ने मिट्टी का घर बनाया, रेत का छोड़ दिया, मैं अनासक्त हूं। ये जो अनासक्त है ना, पूज्य बापू जी महात्मा गांधी जी के जीवन का दिया हुआ एक शब्द, अनासक्त। कुछ भी करते हुए मैं इसको करने वाला, जब मैं आएगा तो कष्ट हो जाएगा। कृष्ण बोलते मैं तो कष्ट से नहीं हूं। उन्होंने जब पांडव और कौरवों के युद्ध के लिए संधि करने गए, कर लो युद्ध, परवाह नहीं, क्यों, मेरा कर्तव्य तो यही है, विनाश आय च दुष्कृताम, जो दुष्कृत लोग हैं उनको विनाश करने के लिए हूं, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापन को करने के। इसलिए अपने जो यादव लोग हैं मर रहे थे तो कृष्ण कुछ नहीं बोले, चुप ही रहे। वो सांब के पेट में एक बहुत बड़ा क्या एक कपड़ा जोर का बांध करके ऋषि मुनियों के पास ले गए, और कैसे घूंघट निकाल करके क्या बोल रहे वहां पर कि ये लड़की थोड़ा लज्जा कर रही है, इसको लड़का होगा कि लड़की। ऋषि मुनियों ने कहा ना लड़का होगा ना लड़की, मूसल हो जाएगा अंदर से। कृष्ण को नहीं पता है मूसल को उन्होंने रगड़ के रख दिए। कृष्ण क्या जानते नहीं थे क्या, अंतर्यामी नहीं थे क्या, सबकी बात जानने वाते। किंतु कृष्ण है वो अनासक्त है, उनके जीवन का कर्तव्य क्या है यही है। देखिए भाई शतरंज का खेल देखा, शतरंज का खेल जो खेल देखते हैं ना, शतरंज का खेल, तो खेलने के लिए वो ऐसा बैठता है ऐसे करके, अब दो आदमी को ताश खेलते देखो ना तो उसके कपाल में यहां बट पड़ जाते हैं, वो टेंशन रहते हैं, अरे छक्को ना क्यों, अभी मेरे पास में। दो आदमी को ताश क्यों खेलते हो, रिलैक्सेशन के लिए कि टेंशन के लिए? ये कल रात जो आपका खेल हुआ है, शाम को हम अपना भिक्षा लेने के लिए नीचे गए, वो एक बबुआ रहा होता है, अरे इंडिया तो हारने ही वाला है महाराज, हाँ रात ये हमको 8 बजे बोल रहा है इंडिया तो हारने ही वाला है। अरे तू काहे तू ये विचार कर रहा है, नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है और इतने तनाव में है, कब हमारे पास विकेट बहुत है, गेंद भी बहुत है, मगर एक आदमी ने आकर के ऐसे करके मारा, बस ऊपर आसमान जाकर नीचे आ गया, पक्का आम टपकता है, पकड़ लिया उसको, हाँ चौका छक्का नहीं हुआ है। तो खेल में भी तनाव है, खेल खेल रहे हो उसको तनाव है, बॉलिंग करने वाले को तनाव है, बैटिंग करने वाले को, उससे अधिक हमारे प्रेमपुरी का बबुआ है उसको ज्यादा तनाव है। अरे बबुआ तू घुटने के ऊपर तक तो तौलिया पहन के खड़ा है, गंजी 3.5 खिड़कियां उसमें लगी हुई है, फिर बोल रहा है इंडिया हारेगा। अरे मेरे प्यारे, ये पूरी सृष्टि में कहीं कुछ भी होता है, किसी को तनाव हो सकता है, कृष्ण कहते हैं मैं अनासक्त हूं, मुझे कोई तनाव नहीं है। बट ए ब्यूटीफुल बात, कल शाम को भी, कल प्रातः काल मिलेंगे और शाम को भी हिंदी में ही मिलेंगे 6 से 7:30। वाणी को विराम देते हैं, ओम शांति शांति शांति। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद, आप में बसे परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण।